विषय में मैं सोचता रहा हूं, बड़ी मेरी अपनी कम उम्र से, मैं समझता हूँ 14-15 साल का होऊंगा तब से सोचता रहा हूँ। तो इसका एक कारण ये रहा है कि मैं बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ और रहा। उस वक्त भी करीब 150 आदमी तो उस परिवार में होंगे, अब तो कितने होंगे मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त हम लोग साथ रहते थे। तो अपनी दादी माँ इन सब की हालत जब देखता था तो मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता था कि ये स्त्री कैसे जी सकती है और आगे इसका क्या होगा। तब से बराबर सोचता रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिस ढंग से मैं सोचता रहा हूँ उसमें आगे चलकर बहुत अकेला पड़ गया। जो नए विचार वाले कहलाते थे वो सेक्स से ऊपर नहीं उठ सके, और आज तक भी नए विचार वाले सेक्स से ऊपर नहीं उठ सके हैं। पुराने विचार वाले जितने थे उनको भी एक उल्टे सेंस में, ओवरटेक सेंस में, वो भी सेक्स का ही विचार करते थे। यानि आधुनिक और प्राचीन दोनों तरह के विचारकों के लिए स्त्री सेक्स का ही रूप रह गई, कामिनी कामिनी रह गई। और कहा यह गया कि कामिनी और कांचन दोनों से बचना चाहिए। तो सोना और स्त्री बराबर हो गई। पुरुष को भुलावे में डालने वाली, उसके पतन का कारण बनने वाली, और जो उसके पतन का कारण बनती है वही उसकी मां भी बनती है, ऐसा कुछ विरोध रहा। तो ये सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब तक दोनों मनुष्यता की भूमिका पर नहीं आएंगे, यानी सेक्स को भूल कर, ये बिल्कुल एक अलग विचार है जिसका नाम मैंने ब्रह्मचर्य वगैरह नहीं रखा है। स्त्री पुरुष की बराबरी तब हो सकेगी जब बीच में सेक्स नहीं होगा, वासना नहीं होगी, विषय नहीं होगा। अब सेक्स एक रियलिटी तो है, लेकिन मनुष्य की विशेषता यह है कि वो प्रकृति के अधीन नहीं है। निसर्गानुसारी नहीं है, नेचर का गुलाम नहीं है, यह मनुष्य की विशेषता है। खाने पीने में, सेक्स में, सब बातों में उसको वोल्यूशन है, यानी उसकी इच्छा भी है कुछ। केवल नैसर्गिक प्रेरणा नहीं है, इसके अलावा उसकी अपनी इच्छा है। पशुओं में केवल नैसर्गिक प्रेरणा है, भूख लगती है तो खाता है, प्यास लगती है तो पीता है। ये पशु में है, लेकिन मनुष्य प्यास न हो तब भी किसी ने कहा कि कुछ नहीं तो नींबू का शरबत ही पी लीजिए तो पी लेता है। प्यास के साथ कोई खास संबंध नहीं है। और भोजन के वक्त एक दूसरे को आग्रह करते हैं ज्यादा खाने का, और भूखा ना हो तब भी किसी के घर पहुंच गया हो और कोई अच्छी चटपटी चीज मिल जाए, पकौड़ा वगैरह, तो खा लेता है। ये मनुष्य का गौरव भी है और उसका दोष भी है, दोनों। गौरव इसलिए है कि वो अपनी, उसका जीवन बहुत कुछ अपनी इच्छा पर भी निर्भर है, उसे बना सकता है, बिगाड़ सकता है। तो ये सेक्स अर्ज है, काम वासना है, यह है तो नैसर्गिक, लेकिन मनुष्य के की अपनी इच्छा पर भी बहुत कुछ निर्भर है। अब ये जो मनुष्य की विशेषता है, इसमें से स्त्री पुरुष अपनी समस्या का हल खोज सकते हैं। इसमें मुख्य जो अड़चन, दिक्कत है वो यह है कि स्त्री का, लड़की का गुण डरना माना गया हर जमाने में। कुछ एकाद झींगुर देखकर और छिपकली देखकर लड़का चिल्लाए तो लोग उसको हंसते हैं, लेकिन लड़की जोर से चीख मारे तब भी स्वाभाविक माना जाता है। वो जितनी डरपोक होगी उतनी पुरुष को प्रिय होती है। अब इसमें दोनों का साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, यानी नॉट अमाउंटिंग टू इंसैनिटी, पागलपन नहीं है प्रत्यक्ष, लेकिन उसके नजदीक की ये चीज है कि चीखते ही मैं जिस माँ को पुकारता हूं उसका गुण यह माना जाए कि वो भीरू हो, कायर हो, डरपोक हो, तभी वो अच्छी स्त्री है। तो मैंने ऐसे माना है कि लज्जा और भय स्त्री के गुण नहीं होने चाहिए। अब गांधी था, राजेंद्र बाबू थे, जवाहरलाल जी थे, ये काफी सभ्य आदमी थे, इनमें सज्जनता थी लेकिन लज्जा नहीं थी। लज्जा की क्या जरूरत है, सभ्यता हो, सज्जनता हो, जेंटिलिटी हो, लेकिन शर्म, शर्म हो इसके क्या, यानी स्त्री को शर्म किस चीज की, स्त्री है इसी की शर्म। और जिसे शर्म नहीं है उसे वो कहे ये बेहया है, बेशर्म है, निर्लज्ज है। तो सौजन्य, सज्जनता अगर पुरुष का गुण है तो स्त्री का भी गुण है, वो होना चाहिए। विनयशीलता, नम्रता पुरुष का भी है, स्त्री का भी गुण है, लेकिन स्त्री ने पता नहीं क्यों मान लिया कि उसको शर्माना चाहिए और दबकर रहना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि उसने शारीरिक शक्ति को ही शक्ति मान लिया, जो असल में मनुष्य की शक्ति नहीं। ऐसे देखा जाए तो मनुष्य की शारीरिक शक्ति कौन सी है? इसके सींग नहीं, पैने दांत नहीं, तेज नाखून नहीं, यानी जो पशुओं के पास है उनमें से तो एक भी चीज इसके पास नहीं है। हिरण भी अगर बदल जाए तो सींग भौंक सकता है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके भरोसे ये दूसरे जानवरों से अपने को बचा सके। फिर भी ये हाथी की पीठ पर सवार होता है, ये सिंह को अपनी सर्कस में नचाता है। इसका मतलब यह हुआ ना कि शारीरिक शक्ति के अलावा कोई शक्ति इसके पास है जो मनुष्य की खास शक्ति है। अब व्हेल मछली, हाथी, सिंह सबको इसने अपने अधीन कर लिया है, तो ये इसमें अक्ल है हिकमत की। कोई ऐसा औजार, ऐसी चीज ये बना लेता है जिससे अपने से ज्यादा शक्तिशाली प्राणियों को अपने काबू में कर लेता है। इस चीज को स्त्री ने क्यों नहीं समझा? मनुष्य की इस विशेषता को क्यों नहीं समझा? तो इसका एक कारण मुझे जो मालूम होता है वो यह है कि स्त्री की शरीर की रचना ऐसी है कि उसके शरीर का उपयोग उसकी इच्छा के बिना हो सकता है। तो जिसे आप सेक्स कहते हैं, काम कहते हैं, उसमें इनिशिएटिव स्त्री की तरफ नहीं है। अब ये जिसे प्राकृतिक कहते हैं, नैसर्गिक नेचुरल कमजोरी है स्त्री की, ये चट्टान है जिस पर उसका जहाज जाकर टकरा जाता है। इसका जवाब उसको खोजना है। तो ये जवाब दुनिया भर के वीर पुरुषों ने दिया है अपने जीवन से। रावण के 10 मुंह 20 हाथ, राम के का 1 ही मुंह और 2 हाथ, रावण इतना तगड़ा, ऊंचा, पूरा, लंबा, चौड़ा, राम सुकुमार। फिर भी रावण हारा और राम जीता, कुछ तो संकेत होंगे। हमने उसको मान लिया भगवान का रूप, लेकिन भगवान को अगर रूप ही ले रहा था तो 20 की जगह 40 हाथ क्यों नहीं लिए और 10 की जगह 20 मुंह लेकर आता? भगवान को तो चाहे जैसा रूप लेना संभव था, लेकिन वो तो 4 हाथ के 2 हाथ लेकर आया। वहां 4 हाथ होंगे स्वर्ग में उसके, तो यहां 2 हाथ लेकर आया। सारे वीर पुरुषों का यह हाल है। बिल्कुल आधुनिक लें तो गांधी इतने बड़े साम्राज्य को ललकारा, लेकिन हाथ में एक तलवार भी नहीं ली। तो उसके पास कौन सी शक्ति थी? शक्ति ये थी, तलवार का डर छोड़ दिया। जिसने हथियार का डर छोड़ दिया उसके लिए दुनिया के सारे हथियार बेकार हो गए। स्त्री को क्या करना पड़ेगा? पुरुष का डर छोड़ देना पड़ेगा। और ये वो नहीं कर पा रही है, ये बुनियादी कमजोरी है। इसमें वो सफल नहीं हुई है। प्रतिक्रिया में से सफलता नहीं आएगी। ये जो विमेंस डिप वाले हैं, सेक्सुअल पॉलिटिक्स वाली वो और दूसरी बहुत किताबें निकली हैं उनकी, पहले पहले तो मुझसे पढ़ी नहीं जाती थी, लेकिन बाद में मैंने उनको सबको पढ़ा देखा तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो कहीं हम पहुंचाएगी स्त्री को। प्रतिक्रिया में से नहीं होगा। जिसे आज हम सेक्सुअल लाइसेंस कहते हैं या फ्रीडम कहते हैं, फ्री सेक्स, मुक्त काम से वो नहीं होने वाला। क्योंकि इसीलिए मैंने समझाया कि उसमें स्त्री का इनिशिएटिव निकल जाता है, लड़की का या स्त्री का इनिशिएटिव नहीं रहता। तो फिर क्या पुरुष के बिना ही स्त्री रह सकती है? यहां तक वो पहुंचे हैं और कई तरह की बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं। तो ये तो इसे मैं तो मिसेंथ्रोपी कहता हूं ना। पुरुष समझे कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए ब्रह्मचारियों की जिसमें स्त्री दिखाई न दे, और स्त्री समझे कि ऐसी स्त्रियों की दुनिया होनी चाहिए जिसमें पुरुष कहीं दिखाई न दे। तो मैं इसे बहुत मूर्खता की चीज मानता हूं। मूर्खता की ही नहीं, इसमें मानव द्रोह है। हमको चाहिए क्या कि दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें और निर्भयता से रह सकें? सारे क्रांतिकारियों ने इसका विचार किया। तो बाकी और क्रांतियां हम छोड़ दें, क्योंकि और क्रांतियों में स्त्री कहीं आई नहीं। बहुत कम्युनिस्ट क्रांतियों में आई, लड़कियां आई और लड़के लड़कियां साथ रही, साथ क्रांति का काम किया। उसमें लड़के और लड़कियों में आपस में डर नहीं था। फिर भी जिसे मैं कहता हूं उस तरह का, उसमें बीच में काम वासना आ जाती। चाइना के क्रांति का इतिहास हम पढ़ें या दूसरी रूस की क्रांति का पढ़ें, चीन की क्रांति का इतिहास एक अमेरिकन लड़की ने लिखा है, एग्नेस स्मेडले, स्मेडले उसका नाम है शायद, मैं नाम भूल जाता हूँ। और रूस की क्रांति का भी लिखा गया है, ये एडगर स्नो वगैरह इन लोगों ने बाद में लिखा है। लेकिन जो जिन लड़के लड़कियों ने हिस्सा लिया तो उनको यहाँ तक तो पहुंचना ही पड़ा कि क्रांतिकारी लड़की और क्रांतिकारी लड़का एक दूसरे से नहीं डरेंगे। तो इसका मतलब होगा कि जो क्रांतिकारी लड़का होगा उससे कोई लड़की नहीं डरेगी, और जो क्रांतिकारी लड़की होगी वो किसी लड़के से नहीं डरेगी। इसमें मैंने गांधी का नाम इसलिए लिया कि गांधी ने हथियार का डर छोड़ दिया, लड़की को शारीरिक बल का डर छोड़ देना होगा। जब तक वो बलात्कार से डरती रहेगी बलात्कारों की संख्या बढ़ेगी। जैसा बांग्लादेश के की लड़ाई में हुआ, और हर लड़ाई में हुआ, आज भी चाहे रूस और चीन में यानी दो कम्युनिस्ट देशों में भी युद्ध हो जाए तब भी पहली चिंता ये होगी कि स्त्रियों को बचाएं। चीन वालों को अब चीनी स्त्रियों की फिक्र होगी, रूस वालों को रूसी स्त्रियों की फिक्र होगी। अब ये समस्या जब तक है तब तक स्त्री की स्वतंत्रता वास्तविक नहीं हो सकती। वो नागरिक बन गई है लेकिन ये समस्या जब तक है तब तक उसकी स्वतंत्रता वास्तविक नहीं हो सकती, और जब तक उसकी स्वतंत्रता वास्तविक नहीं हुई है तब तक क्या होगा, उसको पुरुष का सहारा खोजना पड़ेगा। अब ये पुरुष के सहारे की उम्मीदवार अगर है तो उसकी बराबरी पर कभी नहीं आएगी। ये आखिरी समस्या है स्त्री के जीवन की जहां आकर स्त्री रुक गई। वो सेना में पहुंच गई, वो मंत्रिमंडल में पहुंच गई, वो यूनिवर्सिटी में पहुंच गई, ऐसी जगह कोई रही नहीं है जहां पर स्त्री न पहुंची हो, फिर भी स्त्री की समस्या रह गई है शेष। उसका उसकी जड़ यह है, उसका कारण यह है कि उसको पुरुष का सहारा खोजना पड़ता है। तो इसको कैसे वो जीते, इसमें वो जीत सकती है जिस दिन वो बलात्कार का भय छोड़ दे। स्त्री को संकल्प कर लेना चाहिए कि बलात्कार से स्त्री भ्रष्ट नहीं होती। आज स्त्री ही बलात्कार के बाद स्त्री को भ्रष्ट मानती है। मेरे मुंह में जबरदस्ती कोई मुझे पकड़कर गाय का मांस ठूस दे तो मैं भ्रष्ट नहीं होता। लेकिन इतने से स्त्री की समस्या हल नहीं होती, वो मां बन जाती है अनिच्छा से। तो अब विज्ञान के युग में उसे कोई ऐसी युक्ति खोजनी पड़ेगी कि अनिच्छा से मां न बन सके। जो खोज चाहिए उसकी बात मैं कह रहा हूं। मातृत्व स्त्री का गौरव भी है और स्त्री का अभिशाप भी है। स्वेच्छा का मातृत्व उसका गौरव है, अनिच्छा का मातृत्व अभिशाप है। पुरुष अनिच्छा से पिता नहीं बन सकता। मुझे ऐसा लगता है, यह प्रयोग का विषय है, स्त्री को हिम्मत करनी होगी कि जितनी अधिक स्त्रियां बलात्कार की चिंता छोड़ देंगी उतने बलात्कार समाज में कम हो जाएंगे। बलात्कार से जितनी डरेगी उतने बलात्कार अधिक होंगे। इसका थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, जिन्हें आप निचले वर्ग की स्त्रियां कहते हैं उन स्त्रियों पर बलात्कार कम होते हैं, या अछूत वगैरह इनको छोड़कर, जो खुली रहती हैं हमेशा। अब आदिवासी स्त्री है, मैं समझता हूं कम से कम कपड़े उसके शरीर पर रहते हैं, फिर भी आदिवासी स्त्रियां निकल रही हों तो कॉलेज के लड़कों की भीड़ नहीं लगेगी देखने के लिए। लेकिन कॉलेज की लड़की के लड़के कपड़े अगर कम हो तो वहां भीड़ लग जाएगी। इसका कारण यह है कि आदिवासी स्त्री अपने शरीर का प्रदर्शन नहीं करना चाहती, और पढ़ी लिखी लड़की अपने शरीर का प्रदर्शन करना चाहती है। तो प्रदर्शन तो दूसरे के लिए होता है, अपने लिए तो होता नहीं है। प्रदर्शन का मतलब ही है दूसरा देखे, और दूसरा देखे इस मतलब स्त्री को स्त्री देखे तो क्या फायदा। लड़का भी जब अगर प्रदर्शन करेगा तो लड़की के लिए करेगा, बनाएगा अपना सारा ठाट। उसी तरह से लड़की भी प्रसाधन जितना करेगी, मेकअप, वो लड़के के लिए करेगी। इसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता हूँ, ये भी कह दूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने लोग जैसे करते थे, विधवाओं के सिर मुड़वा डालो और उनको किसी तरह का अलंकार मत पहने दो जिसमें पुरुषों को आकर्षण न हो। इसलिए मैंने कहा ना कि ओवर्ट सेक्स है, इसको उल्टा कर दिया। वो सेक्स ऑब्जेक्ट रही आखिर, उसको अनाकर्षक बना दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों सुंदर रहें, दोनों आकर्षक रहें, और फिर भी एक दूसरे का डर न। अब इसको शुरू पुरुष ने किया, इतिहास यही है। स्त्री की स्वतंत्रता का आंदोलन कोई स्त्रियों ने नहीं किया, ये तो किया पुरुष ने ही शुरू। और अब वो यहां तक पहुंच गया कि उसने प्रधानमंत्री भी बना दिया। कोई जगह ऐसी नहीं रखी। एक बात मैंने इन भाषणों में कही थी, कानून अधिकार दे सकता है, अधिकार का लाभ उठाने की ताकत नहीं दे सकता। कानून की यह मर्यादा है, वो हमें अधिकार दे सकता है। मुझे अधिकार है कि मैं मोटर चलाऊं, लेकिन मोटर चलाने की शक्ति कोई कानून मुझे नहीं दे सकता। मुझे अधिकार है कि हाथी पर बैठूं, लेकिन हाथी खरीदने की शक्ति कोई कानून मुझे नहीं दे सकता। कानून के उपभोग की शक्ति हमें अपनी होनी, हमें अपनी होनी चाहिए, और ना हो तो कमानी चाहिए। ये स्त्री को करना है। वो कहती है कि यह भी पुरुष करे तो वो खुश होता है कि ठीक है, इसको स्वतंत्रता देने के बाद भी चाहती है कि मैं सब कुछ करूं तो अच्छा ही है। इसे मैंने मजबूत पैर दे दिए फिर भी ये मेरे कंधे पर बैठना चाहती है, कोई हर्ष नहीं, क्योंकि उसमें पुरुष का फायदा ही। स्त्री पुरुष पर जितनी निर्भर रहेगी उतना पुरुष का लाभ है। तो मुझे तो आश्चर्य है कि पुरुष यहां तक पहुंच कैसे गया कि उसने उसको बना दिया प्रधानमंत्री भी। अब पढ़ी लिखी लड़की क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं क्लब में भी जा सकूं, मैं सिनेमा में भी जा सकूं, मैं पार्क में भी जा सकूं, मैं आजादी के साथ मोटर भी चला सकूं, और ये सब चीजें जब मैं करती रहूं तो मेरा संरक्षण पुरुष करता रहे। अब वो यानी इसका गरबा नहीं हो गया एक तरह का वॉचमैन, तो वो गधा है जो धर्मान बना रहेगा। वो कहता है कि दरबान क्यों बनूंगा, बनूंगा तो मालिक ही बनूंगा, दरबान क्यों बनूंगा। तो मैं एक तरह से आईना दिखाना चाहता हूं स्त्रियों को कि वो देखें जरा अपनी शक्ल सूरत, अपने जीवन को देखें कि कैसा जीवन वो जी रही हैं। आजादी चाहती हैं और सुरक्षित आजादी चाहती हैं, ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं? आजादी के साथ तो जिम्मेवारी आएगी ना। वो तो अमीर की तरह हो गया कि बग्गी में बैठकर बाहर निकलना भी चाहता है और चार चार सिपाही रखता है बचाने के लिए, और समझता है कि मेरी शान है। शान उसकी क्या है? वो सिपाही दूसरे दिन छोड़ दे तो उसको कुछ है ही नहीं इज्जत अपनी। अमीर की इज्जत जिस तरह सिपाही की इज्जत है, उस तरह आज स्त्री की इज्जत पुरुष की इज्जत है, उसकी अपनी इज्जत है ही नहीं। मैं कुछ बहुत साफ भाषा में रख रहा हूं, आज स्त्री की अपनी इज्जत कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि उसकी अपनी इज्जत हो। जब मैं स्त्री कहता हूं तो उसमें मेरी माँ भी आती है, मेरी बेटी भी आती है, बहन भी आती है, ये सब आती है, सारी स्त्रियां ही हैं। उसकी अपनी इज्जत नहीं है। तो ये पढ़ी लिखी लड़कियां भी समझ लें, और मैं यह चाहता हूं कि ये गांव की स्त्रियों को समझाएं। गांव की स्त्रियों को समझाने की जरूरत इसलिए है कि वो भी नागरिक बन गई है, उसके भी वोट है। और पढ़े लिखे की जरूरत ना रहे तो जैसे बगैर पढ़े लिखे मिनिस्टर बन जाते हैं, लड़की भी बन जाएगी, बन सकती है गांव की लड़की भी। तो उसकी समझ में ये चीज आनी चाहिए कि मैं पुरुष के भरोसे नहीं जीऊंगी। अब मुझे ऐसी गांव की स्त्रियां मालूम हैं जो हमारे घरों में कपड़े धोती हैं, बर्तन मांजती हैं, कमाती हैं, घर जाती हैं, तो शाम को वो पुरुष आता है शराब पीकर, एक पैसा उसे नहीं देता, उसकी मजदूरी के पैसे छीन लेता है और ऊपर से उसे पीटता है। अब वो उस वक्त इतना कमजोर होता है कि ये दो तमाचे लगाए तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसने अपना धर्म मान लिया है कि तमाचे खाने हैं, नहीं तो मैं स्त्रीत्व से भ्रष्ट हो जाऊं। یہاں تک غلامی پہنچ گئی ہے استری کی. ان گاؤں کی استریوں کو یہ سمجھانا چاہیے, پہاڑوں میں وہ دن بھر حکا پیتا ہے, اتراکھنڈ میں کچھ کام نہیں کرتا, سارا کام استریاں کرتی ہیں, دن بھر کھٹتی ہیں, کھیت کا کام بھی کرتے ہیں, باہر گھر آ کر روٹی بھی بناتی ہے, اور اگر اس کی پسند کی چیز نہیں بنی تو وہ اس کو پیٹتا ہے. یہ گاؤں کی استریوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کوئی دھرم نہیں ہے, یہ ادھرم ہے. اس طرح سے جینا, کسی کا بھی اس طرح سے جینا بہت بڑا ادھرم ہے. اور وہاں تو وہ پانچ پانچ شادیاں صرف اسی لیے کر لیتا ہے کہ پانچ پانچ مزدوریوں کی ضرورت ہوتی ہے, جتنی مزدوریاں چاہیے اتنی شادی کر لیتا ہے, کیونکہ مزدوری نہیں دینی پڑتی اور کام تو کرتی ہی ہے گھر میں. تو یہ ہم کیوں نہ سمجھائیں ان کو, پڑھی لکھی لڑکیاں کیوں نہ سمجھائیں, اور یہ نہیں سمجھا سکتی. اس کا کارن یہ ہے کہ پڑھی لکھی لڑکی گاؤں کی لڑکی سے ڈرپوک زیادہ ہے, بہت زیادہ ڈرتی ہے. پرانی استریاں آج کی لڑکیوں سے نربھے ادھک تھی, اور گاؤں کی استریاں مزدوروں کی استریاں پڑھی لکھی لڑکیوں سے ڈرپوک کم ہیں. اس لیے ان کو سکھا نہیں سکتی. وہ ماؤں نے کہا تھا نا کہ کچھ چیزیں تو ہم کو ماس کو سکھانی ہے اور کچھ چیزیں ماس سے سیکھنی ہے. تو جو استریاں ہیں ان استریوں سے ماس سے ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ وہ نربھیتا کی ان کی پہچان کی, ان کا راز کیا ہے, رہسیہ کیا ہے, کون سی چیز ہے جس میں ان کی نربھیتا ہے. ایک چیز ہے, شریر کو دھن نہیں مانا ہے انہوں نے اس ماترا میں, جس ماترا میں پڑھی لکھی لڑکی نے شریر کو دھن مانا ہے اس ماترا میں انہوں نے شریر کو دھن نہیں مانا ہے. یہ فرق راج کنیا میں اور اس کی ٹہل نمی اس کی داسی میں ہمیشہ رہا. راج کنیا ادھک ڈرتی تھی, داسی کم ڈرتی تھی, دونوں استریاں ہی, لیکن اس نے شریر کو ہی دھن مان لیا. راجکماری کا ورنن ہی ہمیشہ ایسا رہتا ہے کہ بس وہ ایسی تھی کہ دیوتا بھی موہت ہو جائیں, اور جتنے راجا ادھک موہت ہوئے اتنے وہ ادھک راج کنیا اچھی سمجھی جاتی تھی. تو میں نے آپ سے کہا کہ روپ کو, میں بھی مانتا ہوں کہ روپ اچھا ہونا چاہیے. رام چندر جی کا روپ بہت سندر تھا, وہاں لکھا ہوا ہے سارے ویر پروشوں کے روپ بہت سندر تھے. تو استری کا روپ سندر ہو اس لیے وہ ڈرپوک کیوں, بھیروتا کیوں ہو, اتنا ہی فرق ہے کہ روپ کو دھن نہ مانے, روپ کو دھن نہ مانے. وہ ہمارے چھٹپن میں کویتا تھی نا, ویئر آر یو گوئنگ ٹو مائی پیٹی میڈ مائی پیٹی میڈ, آئی ایم گوئنگ اے ملکنگ سر شی سیڈ سر شی سیڈ سر شی سیڈ. What is your fortune, my petri maid? My face is my fortune, sir, she said, sir, she said, sir, she said. تو روپ کو ہی دھن مان لیا, اس لیے استری روپ جیوی بن گئی. रूप ही उसका जीवन बन गया, गुण नहीं बना। ये चीज समाज में सब जगह आ गई। मैं लड़की के लिए अपनी लड़का खोजने गया, वो कुछ काला है, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि कुछ काला है लड़का, तो लड़के का कोई रूप देखा जाता है। लेकिन मैंने कहा कि बहू भी तो सांवली है ये, तो फिर वो नहीं आ सकती। सांवली लड़की नहीं, चाहे गुणवान हो, सांवला लड़का चल जाएगा गुणवान अगर है तो, कमाई कूत हो। लेकिन स्त्री के लिए कोई कमाई काफी नहीं है। ये निचले वर्ग की स्त्रियां सब कमाती हैं। ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये तो मिडिल क्लास का नारा है। ये जितनी मजदूरियां हैं ये सब कमाती हैं, और इनमें से कुछ तो अपने पति से अधिक कमाती हैं, फिर भी रोज पिटती हैं घर में, रोज मार खाती हैं। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। उससे स्त्री स्वतंत्र नहीं होने वाली। ये तो हम लोग जो सफेद पोश लोग हैं इनके बीच में आ गई है चीज। मैं जब इसमें था हमारी असेंबली में, तो हमारे यहाँ कुछ वो आदिवासी थे मेंबर, वो अपने क्षेत्र में मुझे ले गए, तो मैं उन लोगों को समझाता था क्या क्या करना चाहिए। वो खड़ा होता था मुझसे ठीक उल्टा समझाता था। वो कहता था कि हमको मजदूरी छोड़ देनी चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, कैसे इन लोगों की स्त्रियां रहती हैं, हमारी कोई तरक्की नहीं हुई है। तो मैं जितना कहता था उससे उल्टा वो कहता जाता था, क्योंकि उसने मजदूरी छोड़ दी थी, खेत में काम करना छोड़ दिया था जब से वो मेंबर बन गया, तब से अपनी शान के खिलाफ समझता था। तो मुझसे कहता था आप अपने हाथ दिखाइए, दिखाए तो कहे ऐसे हाथ मेरे जिस दिन बन जाएंगे उस दिन मेरी भी तरक्की हो जाएगी। तो वो इस हमारा जो जीवन है उस जीवन को वो अपना आदर्श मानता है। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मेरे जैसे उसके हाथ हो जाएं तो हर्ज नहीं है। ऐतराज एक ही चीज में है कि मैं उसके भरोसे जीऊं, उसको मेरा दरबान बनना पड़े। मैं बिरला टाटा बन जाऊं और मेरे दरवाजे पर वो खड़ा रहे मुझे बचाने के लिए, इससे ऐतराज है। उसी तरह से स्त्री के बारे में भी मैं कहता हूं, उसमें नजाकत रहे, सुकुमारता रहे, सुंदरता रहे, मुझे बहुत खुशी है। इस सब चीजों की सुंदर शक्लें देखकर लड़के लड़कियों की मुझे भी अच्छा लगता है। फिर ऐतराज इतना ही है कि वो लड़के के भरोसे न जिए, लड़कों के साथ जिए लेकिन लड़के के भरोसे नहीं। साथ जब भरोसे जिएगी तो साथ नहीं जी सकेगी। तो ये गांव की स्त्रियों को भी हमको सिखाना होगा, आदिवासियों की स्त्रियों को, अछूतों की स्त्रियों को, जिस प्रकार के अत्याचार उनको सहने पड़े हैं अब तक। ये जिसे आप कल्चर और सभ्यता कहते हैं, कितने लोगों, कितने थोड़े लोगों की रही है, कितने थोड़े लोगों की ये चीज रही है कल्चर नाम की। ये नीचे के स्तर पर कभी गई है, समाज के निचले स्तर पर संस्कृति कोई कभी रही है? अब मेरे यहाँ, मेरे बेटे के यहाँ वो रहते थे कुछ लोग, तो जिस दिन उसके पति से लड़ाई हो जाती थी उस पत्नी की, तो अपने पहले पति के बेटे के यहाँ चली जाती थी। अब ये मैं अपनी माँ के लिए सोच भी नहीं सकता था ये कभी हो सकता है। तो ये ऊपर के स्तर पर रह गया। इसलिए कल्चर संस्कृति जब तक सार्वत्रिक नहीं होती तब तक वास्तविक नहीं होती। संस्कृति सार्वत्रिक होती है तभी वास्तविक होती है, नहीं तो ब्राह्मण पवित्र रह जाएगा और भंगी हमेशा अस्वच्छ ही रहेगा। ब्राह्मण को स्वच्छ रखने के लिए भंगी को अस्वच्छ ही रहना पड़ेगा, पुरुष को स्वतंत्र रखने के लिए स्त्री को गुलाम ही रहना पड़ेगा। और इसका बहुत बड़ा इसकी प्रशंसा होती है पश्चिम के देशों में, और हमारे यहाँ के लोग फूले नहीं समाते कि आपके यहाँ पर सच्ची परिवार व्यवस्था है, कुटुंब व्यवस्था आपके देश में, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, विध्वंस हो गया है उसका। और ये किसके भरोसे है? स्त्री की गुलामी के भरोसे। जो कुटुंब व्यवस्था स्त्री की गुलामी के भरोसे हो उसमें कौन सा सौंदर्य है? तो पश्चिम के लोग तारीफ कर दें तो हम उसको माने? उनके यहां स्वतंत्रता के साथ सेक्स है इसलिए सौंदर्य नहीं आया। स्वतंत्रता के साथ पवित्रता आनी चाहिए तो सौंदर्य आएगा। नहीं तो सौंदर्य नहीं आ सकता है। लेकिन एक फर्क तो है आज भी, मेरी लड़की इंग्लैंड अमेरिका अकेली चली जाती है, लेकिन इस देश में यहां से उसको नागपुर भेजना हो तो मुझे सोचना पड़ता है। अब इतना तो ये देश है धार्मिक और आध्यात्मिक कहलाता है। मैंने कहा ना कि इस देश में पवित्रता नहीं।
इसका ये कारण भी मुसलमानों का जो हमला हुआ इसके बाद ये गुलामी औरतों की विशेष है।
ये कुछ हद तक ठीक है आपका कहना, लेकिन रामायण में भी आपको मालूम है ना, जब वो सीता आई लंका में से तो राम कहता है कि जिसके पैर के नाखून भी अब तक कोई नहीं देख पाया था वो ये सीता। ये वाल्मीकि का वर्णन है। रनिवास तो हमेशा रहा। अब राम की माँ तीन माताएं थी, स्वयं राम की है। तो मुसलमानों के आने से ये चीज एग्रेवेट हुई, ये बढ़ी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये रहा हुआ, अब ये सुग्रीव की पत्नी तारा वो वाली की पत्नी बन गई। सब जगह ये वर्णन तो है ही। तो मुसलमानों का तो था ही, लेकिन ये भी देखिए, इसीलिए मैं स्त्रियों को समझा रहा हूँ, गांधी की विशेषता इसीलिए कह रहा हूं कि उद्दंड लोग आए और यहां वो लोग हमको जीत कर बस गए। जो लोग यहां आए उनमें कौन सी संस्कृति थी? ये हूण आए, ये मुगल आए, और फिर भी हमारे देश आध्यात्मिक कहलाया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उद्दंड लोग सुसंस्कृत लोगों को हरा सकते हैं।
क्योंकि हम लोग विश्व बंधुत्व की भावना शुरू से अधिक थी तो हम सबको समान मानते थे।
समान मानते होते तो दबते क्यों? समान मान वाला तो दब नहीं सकता है ना, ये तो दबा।
पर हम लोग विदेशी किसी को नहीं माना तो,
तो आओ ना, लेकिन हमारे मालिक बनकर रहोगे, आओ रहो यहाँ हमारी तरह।
लेकिन धोखे और विश्वास में लेकर के अगर वो मालिक बन जाते थे।
हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या थे, सिंपलटन थे, गधे थे। आवश्यकता से अधिक अगर सद्गुण हो सकता है तो वो सद्गुण ही नहीं है। सद्गुण आवश्यकता से अधिक कैसे होगा? सद्गुण की कोई हद नहीं, दुर्गुण की हद होती है।